अरमान से अंश की बातों को सुनकर आस्था कांप गई और उसने तुरंत अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया और कांपते हुए सोचने लगी, ये सब क्या था? ये हमने क्या सुना? ये अरमान जी अंश से ऐसे कैसे बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा था वो किसी बच्चे से नहीं बल्कि किसी मैच्योर आदमी से बात कर रहे हों। हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है? हमारा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? आस्था पूरी तरह से बेचैन हो उठी थी और तभी अरमान ने वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और बोला, मिसेस सिंघानिया, अगर शावर लेने में आपको कोई मदद चाहिए तो मैं अंदर आकर हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर आस्था ने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और अंदर से ही बोली, अरमान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम बस अभी आ रहे हैं, बस अभी, आप अंश का ख्याल रखिए। फिलहाल आस्था ने सोचा, कहीं हम ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं। इस बारे में अरमान जी उसे ऐसे ही खिला रहे होंगे, हम भी तो अंश से बातें करते हैं और बोलते हैं कि हमारा राजा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा वो बनेगा। ये सोचकर आस्था के मन में जो अजीब सी फीलिंग आई उसने उसे इग्नोर किया और फटाफट शावर लेकर बाहर आ गई। आस्था के बाहर आते ही अरमान ने बड़ी ही प्यारी नजरों से उसे देखा और बोला, आपका बेटा अब गहरी नींद में सो रहा है, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, वो अब अच्छे और जेंटलमैन बच्चों की तरह सुबह ही उठेगा। ये बोलकर अरमान सीधा आस्था के करीब गया, उसकी कमर पकड़कर उसने उसे खुद के करीब किया और बोला था, वैसे अगर आपको ठीक लगे तो हम एक तार और। अब जैसे ही अरमान ने बात अधूरी छोड़ी, आस्था शर्मा गई और बोली थी, अरमान जी प्लीज, हम थक गए हैं, हमें नींद आ रही है और वैसे भी हमें सुबह अपने दादाजी को भी देखना है, उनकी तबीयत कैसी है? अभी हमें उनके कमरे में एक चक्कर लगाकर आना चाहिए, नानी माँ और दादाजी को आराम करने के लिए भेज देते हैं, वो कब से दादाजी के लिए जाग रहे होंगे। अब ये बोलकर आस्था जैसे ही बाहर की ओर जाने लगी, अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था और उसे सीने से लगाते हुए बोला, अभी आप कहीं नहीं जाएंगी। ये बोलकर वो सीधा आस्था को बेड पर ले आया और आस्था को कसकर गले से लगा लिया था। वहीं आस्था थोड़ी सी हैरान हो गई, वो बस जाकर एक बार अपने दादाजी को देख कर आना चाहती थी और मन ही मन सोचने लगी, अरमान जी को क्या हो गया है? इस तरह से हमसे क्यों पेश आ रहे हैं? हम उन्हें छोड़कर थोड़ी न कहीं जा रहे हैं, केवल दादाजी को देखने के लिए ही तो जा रहे थे, अब क्या ही करें। वहीं अरमान भले ही आंखें बंद करके आस्था के वजूद से लिपटा हुआ लेटा था, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही तरह का आंधी तूफान चल रहा था। बार बार उसके मन में ये सवाल आ रहा था, अगर आस्था के दादाजी बच गए और उन्होंने मेरे बारे में आस्था को बता दिया तो क्या आस्था मुझे माफ कर देगी या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? अरमान के मन में ये ख्याल आते ही उसने आस्था को और कसकर पकड़ लिया था। आस्था को काफी घुटन सी महसूस होने लगी तो वो बोली, अरमान जी अब क्या कर रहे हैं? अभी तक इतनी टाइट हमें क्यों पकड़े हुए हैं? हम आपके करीब हैं, आपके पास हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। आस्था की बात सुनकर अरमान ने भी खोए हुए लहजे में कहा था, क्या वाकई आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी? ये सुनकर एक पल को आस्था चौंक गई और बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप में ही तो हमारी जान बसती है मिस्टर सिंघानिया। उसकी बात सुनकर अरमान ने आस्था के माथे को चूम लिया और खुद को नॉर्मल दिखाकर सोने की कोशिश करने लगा था। आस्था तो अरमान का प्यार पाकर वैसे ही गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन अरमान की आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी। आस्था की गहरी नींद में सो जाने का एहसास होते ही अरमान उठा, एक सोई हुई नजर उसने आस्था पर डाली और सीधा रूम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर प्रियंका कुछ ही देर में जाग गई, उसकी आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी। उसे तो लगा था कि अबीर ने अपनी मर्जी से शादी की है, वो उसके करीब आएगा, उसे प्यार करेगा और फिर अपनी फर्स्ट नाइट की शुरुआत करेगा, लेकिन यहाँ तो अबीर ने उसे टच तक नहीं किया था। हालांकि उसके मन में इस तरह की कोई गलत बात नहीं आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि अगर अबीर उसके करीब आता तो शायद उनका रिश्ता एक बार फिर से शुरू हो सकता था और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहे थे। वो सोचने लगी, अबीर मेरे करीब क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर ने जो भी मेरे साथ किया उसकी वजह से उनके मन में कोई बात तो नहीं है? लेकिन अबीर को तो मेरे बारे में सब कुछ पता था, सब कुछ जानते हुए ही उसने मुझसे शादी की है, फिर वो मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा है? वहीं अबीर आंखें बंद करके लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रियंका की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर बैठ गई और फिर खुद को देखने लगी और फिर खुद से बोली थी, वैसे मानना पड़ेगा मेरी ये शक्ल भगवान ने बड़ी खूबसूरत दी है। इस शक्ल ने मुझे न केवल अबीर जैसा हमसफर दिलाया बल्कि उसकी माल दौलत भी मुझे मिल चुकी है। अबीर अरमान से कम नहीं है, आखिरकार अबीर सिंह राठौर भी अपने आप में एक महान हस्ती है। थैंक यू सो मच आस्था, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को डांटते हुए सोचने लगी, नहीं, हमें इस तरह की घटिया बातें नहीं सोचनी चाहिए। अगर किसी को मेरी सोच के बारे में पता चल गया तो काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी नानी माँ अभी तक मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई है, उन्हें जरा सा भी मेरे अंदर छिपी हुई लालच के बारे में पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगी। और वैसे भी अबीर सिंह राठौर का नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है और सिर्फ मेरा है। ये सोचते हुए प्रियंका के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी ओर आधी रात के करीब तक नानी माँ और दादाजी दोनों ही मिनी अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे। तभी दादाजी ने नानी माँ की ओर देखा और कहा,
बहन जी आप भी जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। तब नानी माँ ने उन्हें मना करते हुए कहा, भाई साहब मैंने भी आस्था बेटी से वादा किया है कि मैं यहाँ उसके दादाजी के पास रहूंगी और उनका ख्याल रखूंगी, मैं यहीं रहूंगी। तब प्यार से आलोक जी ने नानी माँ को समझाते हुए कहा, बहन जी एक काम करते हैं, आप एक दो घंटे के लिए जाकर आराम कर लीजिए, उसके बाद आप आ जाइएगा और मैं सोने के लिए चला जाऊंगा। इससे बारी बारी से हम दोनों को भी आराम मिल जाएगा और इनकी देखभाल भी होती रहेगी। जैसे ही दादाजी ने ये सुझाव दिया, नानी माँ को भी ये ठीक लगा। वैसे भी अगर पूरी रात दोनों जागते रहते तो उनकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए नानी माँ ने कहा, ठीक है मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर नानी माँ कमरे में आराम करने चली गई और आलोक जी वहीं बैठे रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद अरमान सीधा मिनी अस्पताल पहुँच गया। अरमान को वहाँ देखकर आलोक जी ने कहा, बेटा तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें इस वक्त सोना चाहिए और आराम करना चाहिए। तब अरमान ने एक गहरी नजर अधिराज जी पर डाली, जिनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मशीनों की धीमी आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं और उनकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं। फिर अरमान ने आलोक जी की तरफ देखा और बोला, दादाजी आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, वैसे भी आस्था के दादाजी की देखभाल करना और उनका ध्यान रखना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सुनकर कहीं न कहीं आलोक जी ने गर्व भरी नजरों से अरमान की ओर देखा। वो मन ही मन सोचने लगे, चलो शुक्र है, अरमान को कम से कम इस बात का ख्याल तो आया कि उसे अपने ससुराल वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। आलोक जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा हम रात को यहीं रुकेंगे, तुम जाकर आराम कर लो, वैसे भी सुबह तुम्हारा ऑफिस है। लेकिन अरमान ने दृढ़ स्वर में कहा,
दादाजी जितना मैंने कहा है उतना कीजिए, जाइए और आराम कीजिए, आपकी दवाइयाँ भी कमरे में रखी हैं, अगर आप पूरी रात जागते रहे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तब तक मैं यहाँ हूँ। आखिरकार आलोक जी वहाँ से चले गए। अब अस्पताल के उस हिस्से में अरमान अकेला मौजूद था। वहाँ मौजूद डॉक्टरों और नर्सों को भी पास के कमरे में आराम करने भेज दिया गया था। अरमान ने गहरी नज़रों से अधिराज जी को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो उनके और करीब गया और फिर उनके सामने खड़ा होकर बोला, मिस्टर रघुवंशी समझ नहीं आ रहा आपको क्या कहूँ, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे बारे में कितना याद है और कितना नहीं, लेकिन आस्था मेरी जिंदगी है। आस्था को मुझसे दूर करने के बारे में सोचिएगा भी मत। अरमान की आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था। मैं ये भी जानता हूँ कि वो आपको कितना प्यार करती है, लेकिन उसके हर रिश्ते से बढ़कर अगर किसी का प्यार उसके लिए ज़रूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, अरमान सिंघानिया का। अरमान की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। मैं अपनी बीवी को खोने का रिस्क किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। ये बोलते हुए अरमान का हाथ धीरे धीरे अधिराज जी के ऑक्सीजन मास्क की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल उसने ऑक्सीजन मास्क उनके चेहरे से हटा दिया। कुछ ही सेकंड में अधिराज जी की सांसें तेजी से उखड़ने लगीं, उनका शरीर बेचैनी से तड़पने लगा। लगभग एक दो मिनट तक वो लगातार सांस लेने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन तभी अचानक अरमान की आंखों के सामने आस्था का मुस्कुराता हुआ और फिर रोता हुआ चेहरा आ गया। अगले ही पल उसने घबराकर ऑक्सीजन मास्क वापस अधिराज जी के चेहरे पर लगा दिया। अरमान ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं कुर्सी पर बैठ गया। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आस्था की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, कभी भी नहीं, वो खुद से ही बड़बड़ाया। कुछ देर बाद अरमान वहां से बाहर निकल गया, लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि एक कैमरे ने उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर ली थी। अरमान बिना देर किए अपने कमरे में चला गया और जाकर लेट गया। उधर उसके जाने के कुछ ही मिनट बाद अधिराज जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं। उन्होंने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया और गहरी नज़रों से पूरे कमरे को देखने लगे। अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। बिना समय गंवाएं उन्होंने तुरंत इमरजेंसी अलार्म का बटन दबा दिया। आखिर क्या होगा अरमान की इस हरकत का अंजाम, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM।